आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला एक्ट्रेस मैरिलिन मुनरो की। मैरिलिन मुनरो की बात करें तो आपको पता ही है, अभी सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, और मैरिलिन मुनरो भी डिप्रेशन का शिकार थी। इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस, ग्लैमर के लिए मशहूर, सेंशुअलिटी के लिए मशहूर, मैरिलिन मुनरो के बारे में बताया जाता था, इनको एक सेक्स सिंबल के तौर पे देखा जाता था। लेकिन मैरिलिन मुनरो जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान थी। ये बताती थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही और अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार हो गई और इनकी मौत हो गई। एक्सेसिव ओवरडोज ऑफ पिल्स की वजह से इनकी मौत हो गई। नींद की गोलियां खाती थी। तो जितनी जल्दी इनका करियर ऊपर गया उतनी ही जल्दी नीचे आया। बहुत ही छोटा सा सफर था, लेकिन ये जो सफर था इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। और सबसे बड़ी बात है, बहुत स्ट्रगल किया था बचपन में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। पैसे थे नहीं, गरीबी में जीवन बीता, कई बार सेक्सुअल अब्यूज हुई, उसके बावजूद इतनी फेम इन्होंने पाई, इतनी ऊंची ऊंचे पद पे पहुंची। बहुत हर कोई इनको बहुत चाहता था। लेकिन वही है ना कि जब सितारे गर्दिश में आते हैं तब आप कुछ कर नहीं सकते। तो आज हम मैरिलिन मुनरो की बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जानने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। मैरिलिन मुनरो की बायोग्राफी, सिरंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के लिए स्मार्ट कोर्स हमने बनाया है, आप उसको ईएमआई पे अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप अवेल कर लीजिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों अगर हम बात करें मैरिलिन मुनरो, तो भैया इनका जन्म हुआ था हॉलीवुड, जी हाँ, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। 1926 में इनका जन्म हुआ, 1 जून 1926। इनका नाम मॉर्टेंसन था, नॉर्मा मॉर्टेंसन। इन्होंने अपना नाम 20 साल बाद चेंज किया, ठीक है ना। शुरुआत में इनका जो नाम था ना, मैरिलिन मुनरो, इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये तो इनकी दादी जी का नाम है। इन्होंने अपना नाम बहुत बाद में चेंज किया जब ये मूवी इंडस्ट्री में आई, समझ रहे हैं। पिताजी कौन थे नहीं पता। मैरिलिन मुनरो, कई बार इन्होंने अपने पिताजी को खोजने की कोशिश की, खाली नाम पता था, कौन है बिल्कुल नहीं पता, और इनके पिताजी इनको मिले भी नहीं। माताजी जो थी वो मेंटली अनस्टेबल, उनको दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से मैरिलिन मुनरो कभी इस घर तो कभी उस घर, फॉस्टर होम्स में रहती थी। पैसे थे नहीं, इनकी माताजी के पास पैसे थे नहीं, ऑड जॉब्स करती थी, बहुत मुश्किल था इनकी माताजी को, मतलब इनकी जो मम्मी थी वो इनको पाल नहीं पाती थी। तो कई बार मैरिलिन मुनरो को दूसरे घरों में रहना पड़ता था, दूसरे के पेरेंट्स जो होते थे वो इनको ले जाते थे, फॉस्टर होम्स जिनको कहते हैं, और कई बार तो अनाथालय में रहना पड़ता था। 9 साल की थी जब मैरिलिन मुनरो, तो इनकी माताजी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अब जब इनकी माताजी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, वो चली गई पागल खाने, तो मैरिलिन मुनरो को फिर ऑर्फनेज भेजा गया। और इस दौरान मैरिलिन मुनरो बहुत, कई बार इनको अब्यूज किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ इनके साथ कई बार। यहां तक इन्होंने खुद बताया है कि मेरे साथ बलात्कार तक हुआ है जब मैं 11 साल की थी। इतनी बुरी हालत, क्योंकि ना ही माताजी ना ही पिताजी, कोई है नहीं, ना ही कोई भाई बहन, एक हाफ सिस्टर थी जिनसे इन्होंने कभी बात नहीं की। तो बहुत ही मुश्किल भरा जीवन था, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, मम्मी का प्यार भी नहीं, पिताजी का भी प्यार नहीं, कुछ भी नहीं देखा मैरिलिन मुनरो ने। और इसीलिए जीवन भर चाहती रही कि कोई मुझे प्यार करे। जब इनकी पहली शादी हुई थी तो इन्होंने अपने पति से बोला था, 16 साल की थी जब इनकी पहली शादी हुई थी, कि मुझे एक बच्चा चाहिए, ठीक है। मैरिलिन मुनरो को कभी एक बच्चा नहीं था, और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उनके पति ने बोला कि अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी हम मतलब कोई भी अभी बेबी को अभी इस दुनिया में नहीं ला सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अभी तुम बहुत छोटी भी हो और वो जिम्मेदारी तुम अभी नहीं उठा सकती। और दोस्तों ता उम्र ये चाहती रही और कोशिश करती रही कि इनको एक बच्चा हो जाए। कई बार इन्होंने एडॉप्शन की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। तो हमेशा प्यार की तलाश में रही मुनरो, लेकिन इनको प्यार सही प्यार मिला नहीं। इनकी भी गलती थी, ऐसा नहीं है, इनकी भी बहुत गलती थी, लेकिन वही है ना कि अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एनीवे, पढ़ाई तो होनी ही नहीं थी ऐसे माहौल में, तो 15 साल की उम्र में ड्रॉप आउट थी। 15 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब ना ही माता जी हैं ना ही पिताजी हैं, कहाँ जाएं। ऑर्फनेज में बोला गया कि तुम ऑर्फनेज जाओ, अनाथालय जाओ, तो उससे बचने के लिए इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। इन्होंने उस समय जेम्स डोहर्टी से शादी कर ली 1942 में, 1942 में। मैरिलिन मुनरो की 3 शादियां हुई थी, 1942 में 16 साल की थी, इन्होंने शादी कर ली। और डोहर्टी जो थे वो ठीक ठाक काम करते थे। अब उस समय तो पता नहीं था कि मैरिलिन मोनरो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो जाएंगी, और अभी तक ये मॉर्टेंसन ही है, अभी तक इन्होंने नाम नहीं चेंज किया है। लेकिन इनके हस्बैंड बताते हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था उसमें इनके हस्बैंड ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, इतना कुछ इसके साथ हुआ था लेकिन कभी भी वो इसके ऊपर नहीं चढ़ी। मतलब वो जो स्ट्रगल था ऐसा नहीं था कि जो इसकी जिस प्रॉब्लम से ये जूझ रही थी वो इसके दिमाग में घर कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, जिम्मेदार लड़की, एक बहुत खाना बहुत बढ़िया बनाती थी, है ना, और सारी जिम्मेदारियों को निभाना, तो बहुत अच्छा लगता था। इसकी कंपनी बहुत अच्छी। और दोस्तों ये तो बात है, मैरिलिन मुनरो के साथ जो भी रहा बहुत एंजॉय किया इनके साथ, है ना, बहुत फनी थी ये, इनका ह्यूमर कमाल का था। हालांकि इनको डम ब्लॉन्ड बोला गया था बाद में, लेकिन एक्चुअली में बड़ी इंटेलिजेंट थी और इनका फेस ही इतना स्माइलिंग था। इनकी स्माइल पे तो भैया जॉन एफ कैनेडी तक मर गए थे, है ना, वो तक ढेर हो गए थे, तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन इनका मजाक भी बहुत उड़ाया गया। मैरिलिन मुनरो हंसी का पात्र कई बार बनी, जब ये गलियों में जाती थी, ठीक है, तो जिस तरीके से चलती थी लोग इनकी चाल का मजाक उड़ाते थे। जब ये निकलती थी सड़क पे तो पीछे काफी लोग जैसे ये चलती थी ना वैसे इमिटेट करते थे, इनको चिढ़ाते थे, और जैसे ही मैरिलिन मुनरो पीछे देखती थी तो बिल्कुल वो नॉर्मल, तो बड़ा उनको इस चीज से गुस्सा भी आता था, है ना। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि 16 साल में इनकी शादी हुई, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पता है क्या करना है, अभी तक यही है कि सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ बनना है। अपने पति से बोला कि मुझे एक बच्चा चाहिए, और इनके पति ने बोला कि अभी तुम रेडी नहीं हो, ठीक है, और अभी हम किसी भी बेबी को, किसी भी बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाएंगे। काफी मनाने की कोशिश की मुनरो ने, लेकिन मानी ना, इनका इनके पति माने नहीं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। अब आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका इंटर हो गया था 1942 में, 41 में पर्ल हार्बर अटैक हुआ, मेरा पूरा सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा पर्ल हार्बर पे, और 42 में मतलब 41 में ही दिसंबर में ही अमेरिका इंटर हो गया। तो इनके हस्बैंड भी गए देश को सेवा देने के लिए, ठीक है। अब जब इनके हस्बैंड बाहर थे तब भैया इनकी जिंदगी बदल गई। कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। हुआ क्या कि उस समय आर्मी का मोराल काफी डाउन था, ठीक है ना, हिटलर ने इधर, हिटलर तो बैंड बजाया पड़ा था ये आपको पता ही है, ठीक है, और इधर जापान, तो आर्मी का मोराल बहुत ज्यादा डाउन था। तो एक फोटोग्राफर आया और उसने कुछ खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया और उनकी फोटो क्लिक की और बकायदा मैगजीन में छापने लगा। वो समझ रहे हैं, ब्लू मैगजीन आती थी उस समय, और उसमें फोटो छापने लगा मैरिलिन मुनरो। देखिए जब शुरू में जब इंसान बच्चा होता है, ठीक है, तब तो 16-17 साल की उम्र में उसका शरीर इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन 16 के बाद आपके हार्मोन जो है वो स्पाइक करते हैं, आपका शरीर डेवलप होने लगता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें चलती हैं इस उम्र में, है ना। ये एज जो होती है, ये जो पीरियड होता है, इसमें समझ में नहीं आता है, ठीक है, और एक तरीके का गोल्डन फेज होता है। तो यहां पे मैरिलिन मुनरो का भी अब शरीर डेवलप होने लगा था, ठीक है ना। मैरिलिन मुनरो जो कि पहले बहुत अच्छी नहीं लगती थी, सुंदर बहुत थी, लेकिन अब 16-17 साल आते आते मैरिलिन मुनरो हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी, ठीक है, इनका पूरा शरीर डेवलप हो गया था। अब ये फोटोग्राफर ने तुरंत इसको देख लिया, ठीक है, और इनको नोटिस किया और इनको फोटोग्राफी के लिए बुलाया। मैरिलिन मुनरो ने पोज मारे, और उसके बाद जब इनकी फोटो छपी, लाइन लग गई मैगजीन्स की, तो पति है बाहर, ठीक है, और वो नहीं है घर पे, लेकिन इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। पति को नहीं पता था, इनके हस्बैंड को नहीं पता था कि मैरिलिन मुनरो जो है वो फोटोग्राफी में व्यस्त है, लेकिन इनकी खूब सारी फोटो निकाली गई और मैगजीन के कवर पेज पे छापी गई, बहुत सारी मैगजीनों की लाइन लग गई और इनकी फोटो जो है वो कवर पेज पे छापी गई। और उसके बाद एक बार क्या हुआ था कि इनके पति जो थे वो फ्रंट पे थे, ठीक है, तो इनके साथ जो जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो एक मैगजीन को देख रहे थे और उस कवर पेज पे इनकी पत्नी की फोटो थी। तो डोहर्टी ने बोला कि अरे ये तो मेरी बीवी है, देखो देखो मेरी बीवी की फोटो। तो जो बगल में सैनिक थे बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ओके, बहुत हो गया, उनको मजाक लग रहा था, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इसकी बीवी हो सकती है। अब दोस्तों वही है ना कि एक बार आपको पैसे का चस्का लग गया, फेम का चस्का लग गया, पॉपुलैरिटी का चस्का लग गया, तब थोड़ा सा अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। मुनरो भी इसी वक्त से गुजरी। अब 16-17 साल कौन सी बहुत बड़ी उम्र होती है, ठीक है, 4 साल तक इनकी शादी ठीक चली, लेकिन अल्टीमेटली जब बहुत सारे असाइनमेंट मिलने लगे मैरिलिन मुनरो को, तो इनके पति ने बोल दिया कि देखो तुम बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हो, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमको मेरे साथ रहना है, 1946 के बाद है 1946, क्या तुमको मेरे साथ रहना है या फिर यही सारी चीजें करनी है, जैसा बताओ। रास्ता बिल्कुल खुला है, अगर तुमको जाना है तो जाओ, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अगर तुमको रहना है तो तुमको ये ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक मूवी में कोई काम नहीं मिला है। तो मैरिलिन मुनरो ने फिर डिसाइड कर लिया कि उस समय तो मिस मॉर्टेंसन थी अगर बात करें, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं छोड़ रही हूं तुमको, और डाइवोर्स दे दिया अपने पहले पति को। 4 साल ये शादी चली, 1942 से लेकर 46 तक, 16 साल में शादी हुई थी, 20 साल आते आते इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनको अपना करियर बनाना था, और उसके बाद अपने पहले पति से कभी नहीं मिली, समझ गए। 20 साल आते आते मैरिलिन मुनरो एक अच्छी मॉडल बन गई थी, और 20 साल में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। हालांकि ऑफिशियल 1956 में किया था, 1956 लीगली इनका नाम चेंज हुआ था, लेकिन 20 साल की जब हुई तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। और इन्होंने 20 साल की हुई तो अपना पहला मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, कि हर मैगजीन के कवर पे तो इनकी फोटो होती थी, और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई। देखिए जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, ये और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी, है ना। मैंने आपको फोटो दिखाई ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत, ठीक है, तो लोग तो वैसे ही पागल थे। अब ऐसी एक्ट्रेस को अगर मूवी में कास्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा प्रॉफिट होगा। तो 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, स्टूडियो है, उन्होंने मैरिलिन मुनरो को नोटिस किया, ठीक है, और उसके बाद इनको एक रोल दिया। अब रोल जो था वो बहुत ही इनका गेस्ट अपीयरेंस था, एक छोटा सा रोल था, स्कूडा हो स्कूडा हे में, ज्यादा रोल था ही नहीं, 5-6 मिनट का था, लेकिन ब्रेक तो मिला इनको। उसके बाद मैरिलिन मुनरो ने अपने ऊपर और थोड़ा फोकस किया, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई, अपनी नाक की थोड़ी सर्जरी करवाई, और फिर इनके इनको एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। 12 महीने का इनका 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके बाद कोलंबिया पिक्चर ने, जैसे ही 12 महीने 1 साल खत्म हुए, कोलंबिया पिक्चर ने इनको साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब भी आप एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि इतने महीने के लिए, इतने साल के लिए आप हमारे साथ ही मूवी करेंगे, समझ गए। तो ये चीज है। अब हम ये देखते हैं कि इधर इनको मूवी मूवी में इतनी ज्यादा इनको सक्सेस फिलहाल नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन कमर्शियल एड्स बहुत ज्यादा कर रही हैं, कमर्शियली इनको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट ये काफी कर रही थी, और इनको खूब सक्सेस मिली। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने प्लेबॉय मैगजीन, जो एडल्ट मैगजीन होती है, उसके लिए इन्होंने न्यूड पोज दिया, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बाद में जब स्टार हो गई थी, देखिए मैरिलिन मुनरो बहुत बड़ी स्टार जब हो गई थी, अभी 2-3 साल में हो ही जाएंगी, अभी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो बहुत लोग इनसे जलने भी लगे थे, और इनका कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत हुआ। तो ये जो कैलेंडर के लिए प्ले बॉय समय एडल्ट मैगजीन आया करती थी, आपको मतलब आपको तो नहीं, ठीक है, ये शायद इसका ये लेकिन चर्चा में रहती है कई बार, ठीक है। तो प्ले बॉय की बात करें तो इस मैगजीन के लिए इन्होंने न्यूड पोज दिए, है ना। अब इस पे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था बाद में, जब ये स्टार बन गई थी, बाद में यही फोटो दिखा के बताया जाता था कि देखो ये तुम्हारी स्टार है, इसको तुम फॉलो करते हो, ये देख लो कोई डिग्निटी है इसके अंदर। इस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन मर्लिन मुनरो के साथ बहुत बार हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है, इन्होंने अभी तक इनको मूवी में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। अल्टीमेटली हम देखते हैं दोबारा इन्होंने 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 7 साल के लिए था, 7 साल के लिए था कॉन्ट्रैक्ट, और पैसे भी बढ़ा दिए, $500 एक हफ्ते के, $500 मतलब उस समय महीने के लाखों लाखों रुपए कमा रही थी, समझ रहे हैं, अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें। मैरिलिन मुनरो, पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है, खूब इनको फेम मिल रही है, खूब इनको शोहरत मिल रही है, पैसा भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। लेकिन वही मैं ना कि काफी लोग इनसे जलने भी लगे थे, कैरेक्टर असैसिनेशन। अब दोस्तों हम इनकी मूवीज की बात कर लेते हैं। देखिए 1953 में हम ये देखते हैं कि इनकी बहुत सारी मूवीज आई जो कि बहुत ज्यादा हिट रही। हम इनकी सिर्फ इंपॉर्टेंट मूवी की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें नायग्रा मूवी थी, हाउ टू मैरी अ मिलेनियर मूवी थी, द 7 ईयर इच 1955 में आई, प्रिंस एंड द शो गर्ल, बस स्टॉप 1956 में आई। लेकिन 1957 तक दोस्तों हम देखते हैं कि ये तंग आ गई थी। क्यों तंग आ गई थी, देखिए दोस्तों इनकी, ठीक है, इमेज क्या बन गई थी कि ये जिस तरीके के रोल प्ले करती थी ना, एक ही तरीके के कैरेक्टर, ठीक है, कि एक ब्लॉन्ड गर्ल है ना, और वो मर्दों को रिझा रही है, ठीक है, एक बेवकूफी वाला कैरेक्टर इनका होता था, कोई इंटेलेक्ट नहीं होता था उस कैरेक्टर का। तो लोगों ने, अब जो लोग मूवी में देखते हैं वही मानना शुरू कर देते हैं, तो लोग इनको समझने भी यही लगे थे। तो इनको डम्ब ब्लॉन्ड बोला गया था कि क्योंकि हेयर इनके ब्लॉन्ड हेयर थे, ठीक है, तो इनको बोला जाता था कि इसको कुछ आता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है, कोई इंटेलेक्ट है ही नहीं, कोई डिग्निटी है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। मर्लिन मुनरो वॉज हाईली इंटेलिजेंट, तभी तो यहां तक पहुंची ना, और बहुत फनी थी, ह्यूमर और काफी ज्यादा दिमाग वाली थी ये, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज करती थी चीजों को। लेकिन फिल्मों में ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया था, इनको एक सेक्स सिंबल के तौर पे दिखाया जाता था बस, और कुछ नहीं, समझ रहे हैं? तो ये जो इतने टाइम से ये जो एक तरीके से कहते हैं ना कि इमेज बनी हुई थी, उससे तंग आ गई थी मर्लिन मुनरो और उसको चेंज करना चाह रही थी। तो 1957 में इन्होंने बोला कि बस अब मैं सीरियस रोल्स करूंगी। ऊपर से लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते थे, जैसा कि मैंने बताया कि लोग इनका काफी मजाक उड़ाते थे, जब ये रोड पे चलती थी इनको इमिटेट करते थे, ये कहीं से जा रही होती थी तो टॉन्ट पास किया जाता था इनको, ठीक है। देखिए मैरिलिन मुनरो एक ऐसे परिवार से आती थी, परिवार क्या, परिवार था ही नहीं इनका, मैरिलिन मुनरो ने कभी पढ़ाई तो की नहीं थी, ठीक है, तो वो चीज तो लैक करती थी इनमें, है ना, एक टाइम पे वो चीज पता लग ही जाती है ना, अगर आप पढ़ते लिखते, या तो आप उसको कवर अप कर जाइए, लेकिन मैरिलिन मुनरो ये कवर अप नहीं कर पाती थी। तो जिस तरीके से चलती थी, जो बात करने का लहजा था, लोग थोड़ा सा इसको बहुत ही मजाक में लेते थे, समझ रहे हैं? लेकिन अब दोस्तों प्रॉब्लम शुरू होंगी, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बताया पैसा इनके पास बहुत आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एक ही तरीके का बार बार ये रोल प्ले कर रही है, और इनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाया जाता था। लेकिन वही है ना कि भैया मूवी इंडस्ट्री को इनकी एक झलक से बहुत फायदा हो रहा था, तो कोई और सीरियस रोल देने के लिए इनको तैयारी नहीं था, यही रोल करते जाओ, क्योंकि खूब पैसा आ रहा था, समझ गए? तो ये चीज है। अब दोस्तों इसी दौरान इनकी एक और शादी होती है, इनके हस्बैंड जो थे, जो दूसरे हस्बैंड थे, जिनका नाम था जो डी मैगियो, 1954, ठीक है, 1954 आते आते इनकी जो मैंने आपको मूवीज दिखाई ना, सुपर डुपर हिट हुई थी, ठीक है, सारी नहीं लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ देम इनकी मूवीज जो है, लेटर मूवी ज्यादा अच्छी नहीं चली, लेकिन ज्यादातर हाउ टू मैरी अ मिलियनेयर, 7 ईयर एच, ये बहुत हिट हुई थी, है ना, तो काफी बड़ी स्टार थी। अब जो डोमैगियो जो थे वो थोड़े अलग किस्म के इंसान थे, लेकिन अगर मैरिलिन मुनरो की लाइफ देखे तो सिर्फ एक ही इंसान था जिसने मैरिलिन मुनरो से सच्चा प्यार किया, वो था जो डिमैगियो, ठीक है, लेकिन इनसे भी 1 साल के अंदर ही इनसे डिवोर्स हो गया। कैसे, चलिए अब हम इस पे आते हैं, इस कहानी पे आते हैं। मैरिलिन मुनरो की बात करें तो बताया कि अरे यार बार बार ये साउंड आ जा रहा है, एक्चुअली मुझसे की दब जा रही है, आई एम सॉरी। तो मैरिलिन मुनरो की बात करें तो हुआ क्या कि जो डिमैगियो थे ये काफी इंटेलेक्चुअल इंसान थे, काफी पढ़े लिखे इंसान थे, और जो डिमैगियो की बात करें तो दोनों एक दूसरे से करीब आए, दोनों एक दूसरे के करीब आए जो डिमैगियो की बात करें, और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, अच्छा खासा मतलब पैसा तो बढ़िया कमाते ही थे ये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है ना कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जो डिमैगियो का भी यही कहना था, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि मैरिलिन मुनरो जो हैं उनके काफी मर्दों से अफेयर थे, मैरिलिन मुनरो के काफी आदमियों से अफेयर थे, काफी अफेयर रहे हैं मैरिलिन मुनरो के। साथ ही साथ जो डिमैगियो चाहते थे कि जो डिमैगियो को लैमलाइट ज्यादा पसंद नहीं थी, इनफैक्ट जब कोई अवार्ड सेरेमनी होती थी तो मैरिलिन मुनरो तो अंदर जाती थी, जो डिमैगियो बाहर ही खड़े रहते थे, वो अंदर तक नहीं जाते थे। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हुए, जो डिमैगियो को ये चीज खटकने लगी कि बार बार मैरिलिन मुनरो जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, मुझे छोड़ के जा रही हैं, ये चीजें काफी ज्यादा खटकने लगी। और एक होता है ना जलन, है ना, वो ईगो पे जो चोट हो जाती है वो जो डिमैगियो के साथ होने लगा, और 1 साल के अंदर अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए तो जो डिमैगियो ने मैरिलिन मुनरो को छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ मैरिलिन मुनरो के लिए, समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे बहुत ये काफी न्यूज चली ये, क्योंकि जब इन दोनों को साथ में देखा जाता था तो सब बताते थे अरे ये तो आइडियल कपल है ना, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मैरिलिन मुनरो जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होती गई। 1955 के बाद से सब कुछ बदल गया। 1957 में ये न्यूयॉर्क आई, इनको लगा कि बहुत हो गया, कैलिफोर्निया में ठीक है मूवीज कर ली, लेकिन अब मैं कुछ सीरियस एक्टिंग करूंगी, तो इन्होंने बकायदा एक्टिंग सीखी, कुछ सीरियस एक बकायदा बहुत बड़ा एक ग्रुप था उनसे बकायदा एक्टिंग सीखी, और इन्होंने बोला कि मैं अब सीरियस रोल्स करूंगी। लेकिन वो सीरियस रोल्स जब इन्होंने बाकी की मूवीज की, लेटर मूवीज की, द मिसफिट जैसे, ये ज्यादा हिट नहीं हुई। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे मैरिलिन मुनरो जो हैं वो बहुत दिक्कत में आने लगी, ठीक है। एक तो वैसे ही एक बार इनका मिसकैरेज भी हो गया था, ठीक है। क्या हुआ था कि जब इनकी शादी, इनकी इन्होंने जब तीसरी शादी की थी, जो कि एक प्ले राइट थे, इनके तीसरे हस्बैंड का नाम था, ठीक है, जो कि एक बहुत मशहूर प्ले राइट थे आर्थर मिलर, इन्होंने 1956 में शादी की थी, इसी दौरान इनका मिसकैरेज हुआ था, समझ रहे हैं? अब जैसा कि मैंने बताया कि ये चाहती थी एक बच्चा, एक बच्चा हो जाए उसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करूं, जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दूं, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, इनको कभी भी बच्चा हुआ ही नहीं, है ना, और जब हुआ तो मिसकैरेज हो गया, तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी, डिप्रेशन में रहने लगी थी, ठीक है। ऊपर से अब मैरिलिन मुनरो में वो बात नहीं रही थी, देखिए 30 साल अब उम्र हो गई थी, 1956 के बाद 30 साल उम्र, अब कुछ लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो गई थी मैरिलिन मुनरो की कि बहुत ज्यादा दिक्कत, शराब भी बहुत ज्यादा पीने लगी थी, डिप्रेशन में थी, तो आपको पता ही है डिप्रेशन में फिर इंसान कुछ काफी गलत चीजें की ओर चला जाता है अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले, समझ रहे हैं। तो मैरिलिन मुनरो डिप्रेशन में चली गई, और उनकी जो मूवीज थी 1956 के बाद जो मूवीज आई हैं वो भी बहुत ज्यादा हिट नहीं रही, कुछ एवरेज तो कुछ बिल्कुल बॉक्स ऑफिस फेलियर, ठीक है। तो इसने मैरिलिन मुनरो को और ज्यादा बीमार कर दिया, ये पिल्स लेने लगी, यहां तक कि मैरिलिन मुनरो जब सेट पे जाती थी तो एक टाइम पे क्या था, जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो डायलॉग बहुत ही आसानी से स्मूथली बोल देती थी, लेकिन अब ये एक एक सीन के लिए 20-20 25-25 टेक्स लेती थी, समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं, इनको क्यू कार्ड की जरूरत पड़ती थी कि कोई मुझे बताए सामने अगर डायलॉग लिखा हो तभी बोल पाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर इनसे किनारा करने लगे, डायरेक्टर इनसे किनारे हटने लगी, और दूसरी एक और चीज है कि बहुत ज्यादा एरोगेंट भी हो गई थी, प्रोड्यूसर जब इनसे कोई सीन करवाते थे तो ऐसी हरकतें करती थी जो बड़ी बड़ी अनॉइंग होती थी, अब प्रोड्यूसर को तो मूवी बनानी है, डायरेक्टर को मूवी बनानी है, ठीक है, लेकिन मैरिलिन मुनरो बार बार इस चीज में फेल हो जा रही थी, तो जिसकी वजह से बड़ा इरिटेशन था, और कोई भी डायरेक्टर फिर एक टाइम पे इनके साथ काम नहीं करना चाहता था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो गया था इनका, अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी, उल्टे सीधे ख्याल आते थे, मतलब पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी, समझ रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि मैरिलिन मुनरो अब बहुत मुश्किल है, इनका करियर बिल्कुल बर्बादी हो गया है। उसी वक्त एंट्री होती है जो डिमैगियो की, जो डिमैगियो दोबारा इनकी लाइफ में आया जब इनको पता चला मैरिलिन मुनरो बहुत ज्यादा बीमार है, तो हीरो बन के जो डिमैगियो दोबारा इनकी लाइफ में आए और इनको सही किया, इनको थोड़े वक्त मूवी से दूर किया, अपने साथ घुमाया, और दोबारा सही हुई मैरिलिन मुनरो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, समझ रहे हैं आप। उम्र जो है मैरिलिन मुनरो की 34 साल हो गई थी, और 34 साल में अब जो करियर है इनका ढलने लगा था, अब जो पीक थी वो चली गई थी, अब बहुत और जो हीरोइंस थी, यंग हीरोइंस, उनकी एंट्री हो गई थी जिन्होंने मैरिलिन मुनरो को टेक ओवर कर लिया था, आप समझ रहे हैं, ये चीजें बढ़ती गई, कुछ वक्त के लिए मैरिलिन मुनरो ठीक थी लेकिन फिर से ये पिल्स लेने लगी, और फिर इनका फेमस जॉन एफ कैनेडी से, हालांकि जॉन एफ कैनेडी से जो इनका रिश्ता है बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है, ऐसा बताया जाता है कि जॉन एफ कैनेडी के साथ भी इनका रिश्ता था, इनकी जॉन एफ कैनेडी के साथ भी रिलेशनशिप में थी, लेकिन ये दोस्तों पूरी तरीके से सही नहीं लगता, जब इनकी बहुत जांच हुई तो ये काफी एग्जेजरेटेड लगता है कि इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि इनका फेमस स्टेज इंसिडेंट, फेमस स्टेज इंसिडेंट वो दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें क्या हुआ था, जॉन एफ कैनेडी का बर्थडे था, प्रेसिडेंट का बर्थडे था, और इनको हैप्पी बर्थडे टू यू गाना था, ये स्टेज पे चढ़ी, जो होस्ट था उसने अनाउंस किया कि मैरिलिन मुनरो के लिए ताली बजाइए, एक बार अनाउंस किया मैरिलिन मुनरो नहीं आई, दूसरी बार अनाउंस किया मैरिलिन मुनरो नहीं आई, तीसरी चौथी बार बड़ी मुश्किल से स्टेज पे आई, और जब ये स्टेज पे आई तो पूरी तरीके से नशे में, ठीक है, और उसके बाद जब ये स्टेज पे आई इन्होंने माइक पकड़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू की जगह हैप्पी बर्थडे टू गा रही थी, ये साफ पता चल गया कि मैरिलिन मुनरो बहुत ज्यादा नशे में शराब पी रखी है, ठीक है, तो बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट था, मैंने बताया ना कि लास्ट जो इनका लास्ट टाइम था वो बहुत खराब भी था, और लोग और ज्यादा हंसने लगे, हंसी का पात्र तो पहले से ही थी, और ज्यादा इनका मजाक उड़ाने लगे, ठीक है। अब 5 अगस्त 1962 की वो रात, 4 अगस्त को ये सोई, ये जब भी सोती थी डिप्रेशन था तो बहुत सारी दवाइयां लेके सोती थी, है ना, पिल्स लेके सोती थी, उसके बिना इनको नींद ही नहीं आती थी, लेकिन जब 5 अगस्त आया 1962, ये जगाने से भी नहीं उठी, 36 साल की थी, इनका देहांत हो चुका था, एक पूरी बॉटल इन्होंने नींद की गोलियां थी वो सब खा ली थी, ड्रग ओवरडोज की वजह से इनका देहांत हो गया था 1962, सिर्फ और सिर्फ 36 साल की थी, तो देख लीजिए डिप्रेशन क्या क्या कर सकता है, समझ रहे हैं, डिप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बात करें, जिंदगी कभी भी मत खत्म करें, कोई भी गलत स्टेप ना लें, लेकिन यहां पे इनका सुसाइड हम नहीं कह सकते, इन्होंने ओवरडोज ऑफ पिल्स, इसकी वजह से इनका देहांत हुआ, समझ रहे हैं। तो 36 साल की थी ये। अब इसके बाद इनकी मौत के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई, बहुत कंट्रोवर्सी हुई इनकी मौत के ऊपर कि ये सुसाइड नहीं है, यहां पे इनके दुश्मन बहुत थे, उन्होंने मार दिया है। उस पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। मैरिलिन मुंड्रो तो मर के चली गई, लेकिन इनका देहांत कैसे हुआ वो आज भी बहुत डिबेट का इशू है। लेकिन 99 क्या, मुझे तो लगता है जितना मैंने पढ़ा, 100% इनकी जो मौत थी ये स्लीपिंग पिल से हुई, इसके ओवरडोज से हुई, समझ रहे हैं। तो मैरिलिन मुंड्रो 1962 में हमको छोड़ के चली गई, लेकिन कमाल की एक्ट्रेस थी, इनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं, और आज तो इनके नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचा जाता है, और कई इनके ऊपर तो रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।